أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بحث ہماری آموزش فلسفہ میں چل رہی ہے اور اس کتاب کے مطابق ہم تیسرے درس میں مطالب کو بیان کر رہے تھے اور تقریباً یہ درس اپنے آخری مراحل میں ہے۔ اس درس میں مختلف مکاتب فکر کا تعارف کرایا گیا، جس میں ہیگل کا فلسفہ تھا کہ جو آبجیکٹیو آئیڈیالزم جس کا نام دیا گیا، ایک جو مکتب تعارف کروایا وہ پوزیٹیوزم تھا کہ اوگسٹ کامٹ جس کا بانی تھا، پھر اس کے بعد ایک تقسیم بندی ذکر کی مغرب فلاسفر کے اندر عقل گرائی کی اور حس گرائی کی، یعنی جو اصالت عقل کے قائل ہیں یا اصالت حس کے قائل ہیں کون کون ہیں، یہ آپ کی خدمت میں بیان ہوا۔ پھر اس کے بعد ایک اشارہ جو ہوا وہ ایگزسٹینشلزم کی طرف ہوا کہ اس کے بانی جو ہیں وہ کرک گارڈ تھے، کہ اس کے اوپر مختصر سی آپ کی خدمت میں وضاحت بیان کی، اور اسی کے ضمن میں فینومینولوجی کے اوپر گفتگو ہوئی کہ جو ہیگل کے فلسفے سے آغاز ہوا اس کا فلسفہ فینومینولوجی، کہ اس کو مختصر طور پہ آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ اور پھر آپ کی خدمت میں جو چیز بیان ہوئی وہ تھی ڈائیلیکٹک میٹریلزم، کہ جس کا بانی کارل مارکس تھا، اور اس نے اپنے ایک دوست کے ساتھ جو جس کا نام اینگلز ہے اس کے ساتھ مل کر اس مکتب کو ترویج دی ہے، اور عرض کیا تھا کہ اس نے ڈائیلیکٹک منطق جو ہے اور اصالت تاریخ کا جو نظریہ ہے یہ اس نے ہیگل سے لیا ہے، اور اصالت مادہ کا جو نظریہ ہے مادیت پسندی اور جو اس قسم کی چیزیں تھیں وہ اس نے فوئرباخ سے لی ہیں۔ بہرحال یہ مطالب گزر گئے۔ آج اس مکتب کا تعارف کروانا ہے، اور یہ آخری مکتب ہے تاریخ فلسفہ میں کہ جو آموزش فلسفہ میں آیت اللہ مصباح حفظہ اللہ نے بیان فرمایا ہے، وہ ہے پراگمیٹزم۔ پراگمیٹزم کا مطلب ہے اصالت عمل، یعنی جن کی نگاہ فکری جہت کے علاوہ یا فکری جہت سے ہٹ کر عمل کے اوپر توجہ مرکوز کرنا یا متمرکز ہونا، عمل ان کے لیے جو ہے وہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس مکتبہ فکر کا جو بانی شمار ہوتا ہے اور جس کے نام پر یہ مکتب ہے وہ ولیم جیمز ہے، یا ولیم جیمز۔ ولیم جیمز یہ امریکی دانشور ہے کہ جو 20ویں صدی کے اندر موجود تھا، یعنی اس کی جو تولد ہے وہ 19ویں صدی کے اندر ہے اور اس کی وفات جو ہے وہ 1910 کے اندر ہے۔ اب ولادت میں اس کی بھول گیا ہوں، ولادت میرا خیال میں اس کی 1942 ہے یا 39 ہے، جی 1819 یا 1839 یا 1842، ان میں سے کوئی ایک اس کی ولادت کی تاریخ ہے، اور وفات اس کی 1842 اور وفات اس کی جو ہے وہ 1910 کی ہے۔ یہ امریکی دانشور تھا۔ کیا یہ پراگمیٹزم کے قائل کیا کہتے ہیں؟ ولیم جیمز کا کہنا کیا ہے؟ ولیم جیمز یہ کہتا ہے کہ وہ قضیہ یا وہ پروپوزیشن یا وہ سینٹینس حقیقت رکھتا ہے کہ جو عملی فائدہ رکھتا ہو، عملی فائدہ جس کا موجود ہو۔ پس ولیم جیمز کے نزدیک حقیقت جو ہے وہ عبارت ہے اس چیز سے، یعنی حقیقت یعنی وہ معنی कि जिसको इंसान का जहन बनाता है ताकि उसके जरिए अमली नताइज को ज्यादा से ज्यादा हासिल किया जाए। एपिस्टेमोलॉजी में जाकर हम एक बहस करेंगे और ये अहम तरीन एक बहस है कि हकीकत की क्या तारीफ है, हकीकत किसे कहते हैं। मुख्तलिफ नजरिए सामने आए हकीकत की डेफिनेशन के अंदर। जो हकीकत की तारीफ यूनान से चली, यानी चूंकि फलसफे का तदवीनी और किताबी आगाज जो है वो यूनान से हुआ था, तो वहां पर भी जो अरस्तू ने हकीकत की तारीफ की थी वो क्या थी कि अगर एक कजिया आपके पास मौजूद है, एक मतलब आपके जहन में मौजूद है, वो अगर वाकईयत यानी जो खारिज में एक चीज़ मौजूद है उसके साथ मुताबकत रखता हो वो हकीकत है। मिसाल के तौर पे अगर आप एक इंसान को फर्ज करते हैं कि मिसाल के तौर पे आपके सामने नाम लिया जाता है कि आया आप अली को जानते हैं, तो आप अली का एक कंसेप्ट जहन के अंदर बनाते हैं। वो कंसेप्ट जो आपके जहन में बना है अगर वो अली के जो खारिज में मौजूद है उसके मुताबिक निकला तो हम कहेंगे कि ये कंसेप्ट हकीकत रखता है। अगर ये कंसेप्ट जो है वो मुताबिक ना हुआ उसके तो हम कहेंगे ये कंसेप्ट गलत है। बस गलती और दुरुस्तगी का मियार मुताबकत है, जहन खारिज के मुताबिक होना चाहिए, इसको कहते थे हकीकत। इसके ऊपर फिर मुख्तलिफ एतराजात हुए, सवालात उठे कि ये भी पूरी दास्तान है मगरब मुफक्किरीन के अंदर कि आया ये तारीफ दुरुस्त है दुरुस्त नहीं है, फिर अगर ये दुरुस्त नहीं है तो उसकी क्या तारीफ होनी चाहिए। तो ये जो सैर चली हकीकत की तारीफ की, जब ये पहुंची विलियम जेम्स के पास, प्रैग्मेटिज्म के मकतब के पास, तो इन्होंने हकीकत की तारीफ की कि हर वो चीज़ के जो अमली फायदा रखती हो वो हकीकत है और जो अमली फायदा ना रखती हो उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। यानी क्या मुराद, यहां पर हकीकत की डेफिनेशन तब्दील कर दी गई, मोहतवा बदल दिया गया। हमारे जहन में जो हकीकत की तारीफ है वो इस विलियम जेम्स के मद्देनजर नहीं है। बदवाज़े बस ये प्रगमेटिज्म का कहना है। फिर आयतुल्ला मिसबाह हफ़ज़हुल्ला जो हैं वो इस बात की तरफ इशारा करते हैं, कहते हैं कि ये जो बात इसने की है ना, अगर हम दिक्कत करें तो इससे पहले भी एक फलसफी और एक मुफक्किर ने ये बात कही है, वो आती है उसके कलाम से। क्यों ना, वो डेविड ह्यूम है। डेविड ह्यूम ने एक जुमला इस्तेमाल किया है अपनी एक किताब के अंदर और कहा, चूंकि वो कामिलन 100% हिस गिरा था, तजर्बा महवर था, वो बात हुई है उसके ऊपर मुख्तसर तौर पे, लिहाजा जब महवर उसने तजर्बे को करार दिया है, हकीकत का मेयार तजर्बा और हिस को बनाया है, तो आकर उसने कहा कि फिर अकल की क्या नक्श व किरदार है, तो अकल कहां जाएगी। तो उसने फिर कहा कि अकल जो है इंसान की रगबतों की खादिम है। बस अक्ल अगर इंसानी रगबतों की खादिम बन जाए तो इसका मतलब यह है कि वो अकली चीज के जो इंसान के इस अमल के अंदर नक्श किरदार अदा करे तो वो तो हम मानेंगे, लेकिन अगर किरदार अदा ना करे वो हम नहीं मानेंगे। तो कहते हैं कि आयतुल्ला मिसबाह फज़लुल्लाह फरमाते हैं कि ये बात तकरीबन विलियम जेम्स ने जो पेश की है प्रैग्मेटिज्म के अंदर, ये उसके कलिमात के अंदर इसके जड़े मौजूद हैं, यानी हम उसकी तरफ इसको पलटा सकते हैं जाकर। फिर एक और मतलब की तरफ यहां पर बयान करते हैं, कहते हैं कि ये जो माना हमने प्रागमेटिज्म का जो माना किया है, असालते अमल का जो हमने माना किया है, ऐसा नहीं है कि ये सबसे पहला बंदा जो है वो विलियम जेम्स हो, बल्कि इसी के जमाने में रहने वाला एक मुफक्किर सबसे पहले ये ताबीर उसने इस्तेमाल की थी। लेकिन फिर बाद में विलियम जेम्स ने जो है इस ताबीर को इस्तेमाल किया, और चूंकि उसने ज्यादा काम किया इसके अंदर, और फिर ये मकतब उसी के नाम पर सब्त हो गया। कौन है वो? शार्ल फिरियस। फियर्स, शार्ल फियर्स हैं, फियर्स, शार्ल फियर्स, शार्ल फियर्स। ये तकरीबन जो है 1839 में पैदा होता है और 1914 के अंदर इसकी वफात होती है। दोनों अमेरिकाई हैं और तकरीबन आगे पीछे हैं, दुरुस्त है? ये मेरा ख्याल में जो बयान हुआ था कि ये जो शार्ल है ये विलादत में, मेरा ख्याल में विलियम जेम्स के बाद में पैदा हुआ है, और इसकी वफात जो है उसके बाद में इस तरह, यानी वो ये 1914 में तकरीबन वफात पाई है इसकी, दुरुस्त है? 1914 में इसने वफात पाई है, 1839 में इसकी जो है विलादत होती है और 1914 में जो है ये इसकी वफात हो जाती है। तो ये भी अमेरिकाई था। सबसे पहले जो इस्तेला इस्तेमाल की और इस माना में इस्तेमाल की प्रैग्मेटिज्म की कि जो विलियम जेम्स के नाम पर जो है मशहूर है इस वक्त, वो ये शार्ल फियर्स है। फियर्स, बहरहाल जो भी हो, ये तारीखचा थोड़ा सा एक एकेडमिक जो बहसें होती हैं उसके अंदर ये तमाम बहसें बताना जो है वो ज़रूरी होती हैं कि ये इस्तेला कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, किसने शुरू की और इसका क्या हालत है, वो आपकी खिदमत में जो वो बयान कर दिया आकर। बहरहाल जो भी हो, ये मकतबे फ़िक्र किसके नाम पे ख़त्म हुआ? इस विलियम जेम्स के नाम से। विलियम जेम्स जो है ये था तो तजर्बे को मानने वाला, खालिस तौर पर तजर्बी मकतब का था, लेकिन इसका और बाकी जो तजर्बे के कायल थे उनके दरमियान जो फर्क था बुनियादी, वो तजर्बे की वसअत के अंदर था। यानी जो पहले तजर्बे के कायल थे वो फकत हिस्सी और जाहिरी तजर्बे के कायल थे, यानी जो हवासे खमसा के जरिए तजर्बे में आ जाए, लेकिन विलियम जेम्स ने जो है तजर्बे के दायरे को थोड़ी वसअत दी। इसने कहा कि जो नफसानी तौर पे तजर्बात मौजूद हैं या जो दीनी तजर्बात मौजूद हैं वो भी इसी तजर्बे के अंदर आते हैं। रुसे बस इसने तजर्बे को थोड़ा सा वसअत दे दिया कर, यानी बातनी तजर्बे को कायल भी हो गया और जाहिरी के तजर्बे का भी। बातनी से मुराद हम क्या लेंगे? यानी नफसानी तजर्बा जो है, दीनी तजर्बा। कैसे दीनी तजर्बे से क्या मुराद है यहां पर? ये कायल है कि खुदा की कुदरत और खुदा की रहमत का एतिकाद रखना इंसान के नफ्स की सलामती के लिए जरूरी है, बस दीन हकीकत है। अब ये जो दीन के जरिए वो अपनी इस नफसानी और साइकोलॉजी के साथ मरबूत मुश्किलात को जो हल कर रहा है, ये तजर्बा दुरूनी है, तजर्बा दीनी कहलाता है, क्योंकि दीन के जरिए वो मुख्तलिफ तजर्बात से गुजर रहा है, मुश्किलात जो हैं उसकी हल हो रही हैं। कि कलामे जदीद के अंदर अगर तौफीक हुई और वहाँ बहस पहुंची हमारी, तो तजर्बा दीनी के ऊपर एक तफसील से हमारी बहस होनी है कि वही की हकीकत में एक नज़रिया तजर्बा दीनी के हवाले से मौजूद है, कि वहाँ पर इसको बहस करेंगे, यहाँ अभी वक्त नहीं है। बस
इसका और बाकी तजर्बा गिरा के दरमियान क्या फर्क है? वो दूसरे जो थे वो फकत हिस्सी और जाहरी तजुर्बे के कायल थे, और ये तजर्बा हिस्सी व जाहरी से हटकर तजर्बा नफसानी और दीनी का भी कायल था। और इसका एतकाद ये था और ये कहता ये था कि कुदरत और रहमत इलाही पर एतकाद रखना ये इंसानी नफ्स और रवान की सलामती के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है, बस ये हकीकत रखता है। क्योंकि हकीकत की तारीफ उसने क्या की थी? हर वो चीज के जो अमल में आकर ज्यादा से ज्यादा फायदा दे वो हकीकत कहलाता है। बस दीन इस माना में हकीकत है। हम किस माना में दीन को हकीकत मानते हैं? क्योंकि खारिज में एक हकीकत है और उस पर हम अमल करते हैं, उसका अकीदा रखते हैं। एक खुदा है जिसको हम मानते हैं, जो खारिज में एक जात एक वजूद रखता है। लेकिन ये जो हकीकत कह रहा है ये और माना में हकीकत कह रहा है। ये कहता है चूंकि इससे फायदा हो रहा है बस हकीकत है। अब वो खारिज में है या नहीं है इससे कोई सरोकार नहीं है। प्रागमेटिज्म का मतलब ही यही है कि सरोकार हमारा ये नहीं है कि कोई चीज है या नहीं है, सरोकार ये है कि ये अमली तौर पर फायदा दे रही है या नहीं दे रही है। बस इस तरीके से ये खुदा वंदे मुताल की रहमत और कुदरत जो है उसका कायल होता है। और उसकी एक मेन वजह यह थी कि ये तकरीबन तारीख में जिक्र हुआ है 29 साल की उम्र में इस ये एक यूं कह लें कि रूहानी बुहरान का शिकार हो गया था। जैसे एक रवानी मुश्किल पैदा हो जाती है नफसानी तौर पे, इंसान साइकोलॉजी के एतबार से बाज़ मुश्किल जो है वो पेश आती है, तो ये उसमें मुब्तला हो गया। तो जब इसने दीन के ऊपर अमल करना शुरू किया, दीनी अहकामात पर अमल शुरू किया, दीनी तजुर्बे से ये गुजरा तो ये ठीक हो गया। तो जब उसने देखा कि दीन जो है वो इंसान की सलामत नफ्स सलामत रवान के लिए मुफीद है तो ये दीन का मोतकिद हो गया और दीन को हकीकत मानने लगा। और फिर इस तरीके से, लेकिन किस माना में? जो माना प्रगमेटिज्म के अंदर किया जाता है। ये एक मतलब था कि जो यहां पर जरूरी था इसका तज़क्कुर देना। फिर इसके बाद आयतुल्लाह मिसबाह हफ़िज़हुल्लाह फरमाते हैं कि ये खुदावंदे मुताल को कामिल मुतलक नहीं मानता था, बल्कि ये उस खुदा का कायल था कि जो खुदा दिन ब दिन तकामुल करता है। इंसान है जैसे बचपन से लेके अपनी आखिरी उम्र तक इसके अंदर तकामुल का रास्ता ही चलता है। इल्म में तकामुल हो रहा है, तजर्बे में तकामुल हो रहा है, और चीज़ें बदन में तकामुल हो रहा है, तकामुल उसके अंदर जो है वो पाया जाता है। तो कहते हैं कि खुदा भी जो है वो तकामुल हासिल करता है दिन ब दिन जो है, और अगर तकामुल ना करे तो ये नक्स है। बस इसकी जो खुदा का जो कंसेप्ट है इसका वो खुदा दीन वाला जो दीन इस्लाम का जो तारुफ करवाया है खुदा का वो मद्देनजर नहीं है आकर। फिर उसके बाद आखिरी नुक्ता जिक्र करते हैं वो ये कि विलियम जेम्स जो है ये इंसान के इरादा आजाद का कायल था, यानी कायल था कि इंसान मुख्तार है। यानी हेगल के फलसफे का कायल नहीं था, हेगल असालत तारीख का कायल था, दुरुस्त है, और मार्क्स भी असालत तारीख का, यानी तारीख के तहत हम जिंदगी गुजार रहे हैं। वहां पर क्या है, इंसान के इरादा फर्दी और आजाद इरादा और मुख्तार होना उसका जेरे सवाल चला जाता है। लेकिन विलियम जेम्स जो है वो इरादे के नक्श का किरदार को मानता था और ये कायल था कि इंसान की जिंदगी में अहम तरीन किरदार इसी इरादे का है, और इरादा के जरिए इंसान जो है वो अपनी शख्सियत बनाता है और ये चीजें। तो अगर इस मपने को देखें तो विलियम जेम्स किस मकतबे फिक्र के अंदर जाता है? एग्जिस्टेंशियलिज्म के अंदर। क्योंकि के गार्ड है कि जिसने हेगल के फलसफे को रद्द किया आकर वो कहा कि तुम्हारे फलसफे के मुताबिक तो इंसान मसूल ही नहीं रहता, इरादा आजाद जो है उसका वो खत्म हो जाता है। तो उसने बुनियाद रखी और सरसख्त इंतकाद किया उसका हेगल का, और बाद में इरादे आजाद को साबित किया और उसका कायल हुआ। तो चूंकि इसके अंदर ये उनसुर पाया जाता है इस एतबार से हम कह सकते हैं कि ये एग्जिस्टेंशियलिज्म के मकतब के नीचे آتا ہے اس اعتبار سے. وائلہ اگر ہم حقیقت کی تعریف کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو یہ پراگمٹزم میں جاتا ہے, کیونکہ ہر چیز کو عمل گرا عمل کے اندر دیکھ رہا ہے. جو چیز فائدہ دیتی ہے عملی طور پر وہ حقیقت ہے, وائلہ دوسری چیزیں حقیقت نہیں ہیں. آخری جو مطلب آیت اللہ مصباح حفظ اللہ فرماتے ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ کو بہت تیزی کے ساتھ ہم نے فلسفے کی ایک مختصر تاریخ بیان کی ہے, آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ مغربی فلسفہ کس پیچ و خم سے گزر کر اس حالت میں پہنچا ہے. کہیں پر آپ دیکھتے ہیں کہ یقین موجود ہے, کہیں پر آپ دیکھتے ہیں شکاکیت موجود ہے, کہیں پر آپ دیکھتے ہیں کہ بالکل یقین کا جو ہے وہ انکار کر دیا جاتا ہے, اور اس طریقے سے بہت سارے نظام جو ہیں وجود میں آتے ہیں, اور اتنے زیادہ نظام وجود میں آتے ہیں کہ ان کا آپس میں کوئی اشتراک بڑی مشکل سے ڈھونڈنا جو ہے وہ مشکل لگتا ہے کہ اشتراک کہاں سے ڈھونڈیں آ کر. مثلا آپ یہی دیکھ لیں, ولیم جیمز کو ایک اعتبار سے دیکھیں تو وہ پرگمٹزم میں جا رہا ہے, ایک اعتبار سے دیکھیں تو ایگزسٹینشلزم کے اندر جا رہا ہے. ہیگل کو دیکھیں مثلا, اسی طریقے سے ڈیوڈ ہیوم جو ہے وہ بالکل الگ ہے, رسل جو ہے وہ بالکل الگ ہے. مثلا فرد محور ہو کر مکتب بننا شروع ہوئے غرب کے اندر. مکتب محور چیزیں نہیں تھی کہ کہیں کہ مکتب جو ہے وہ چل رہا ہے اور پھر اس کے پیروکار چل رہے ہیں, بلکہ کیا تھا وہاں فرد محور جو ہے وہ تحقیقات کا ایک سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا. لیکن فرماتے ہیں کہ اسلامی دنیا کے اندر یہ کیفیت نہیں ہے. اسلامی دنیا میں کیا ہے, یہاں پر فلسفہ جو ہے وہ اپنے اصلی راستے سے منحرف نہیں ہوا. اور پھر یہ کیا ہے, مکتب محور رہا اور اس کے اندر اتنے انحرافات آ ہی نہیں جتنے مغرب زمین کے اندر پائے جاتے ہیں. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اسلامی فلسفے میں فقط تین مکاتب موجود ہیں, جس کا مختصر سا تعارف درسوں میں کروایا کہ فلسفہ مشاہ ہے, فلسفہ اشراق ہے, اور فلسفہ حکمت متعالیہ ہے. بہرحال یہ مطالعاتی چیزیں ہیں کہ آپ اس آخری مطلب کو آپ وہاں پر پڑھ لیں گے. اس کے بعد جو ہے وہ چوتھا درس شروع ہوتا ہے کہ جس کے یہ بھی مقدماتی بحث ہے. یہاں پہ اب ہمارا جو ہے وہ تاریخ فلسفہ ختم ہو گیا. اب ہم جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو فلسفے سے مربوط بحثیں ہیں اس کو شروع کرنے جا رہے ہیں, لیکن کچھ مقدماتی بحثیں اس اصلی بحث کو شروع کرنے سے پہلے ضروری ہیں کہ جس کو آیت اللہ مصباح چوتھے درس سے شروع کرتے ہیں. اور درس کا عنوان انہوں نے لکھا ہے کہ سائنس اور فلسفے کے جو اصطلاحی معانی ہیں اس کو بیان کرے. علم اور فلسفے کے مطلق طور پر, سائنس نہیں بلکہ علم, علم کا کتنے اصطلاحیں ہیں اور فلسفے کی کتنے اصطلاحیں اس کو بیان کرتے ہیں, اور پھر جو ہے وہ اگلے درس میں وارد ہوتے ہیں. میں فقط دو تین نقطے بیان کر کے بحث کو ختم کرتا ہوں کہ اس درس کو ہم مستقل طور پہ کل سے شروع کریں گے. کہ کیوں ضرورت محسوس ہو رہی ہے اس فصل کی, آپ فلسفے کی اصطلاح کو مختلف اصطلاحوں کو جاننے کی کیا ضرورت ہے, یا علم کی مختلف اصطلاحوں کو جاننے کی کیا ضرورت ہے. فرماتے ہیں اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ اگر یہ اصطلاحیں نہ کھولی جائیں تو چونکہ لفظ ایک ہے مختلف علوم کے اندر, مختلف فکروں کے اندر, تو اگر صحیح طور پر اس کی اصطلاحیں اور معانی واضح نہ ہوں تو انسان صحیح نتیجے تک نہیں پہنچ پاتا. اور اس کی ایک مثال دیں گے اس کتاب کے اندر. اور ایک مغالطہ علم منطق میں بیان کیا جاتا ہے, اور زندگی کے اندر دیکھا جائے تو بہت زیادہ اس مغالطے میں مبتلا بھی ہوتے ہیں مختلف افراد, مختلف فکریں, مختلف مکاتب, جو بھی آپ لیں, ہر میدان کے اندر یہ مغالطہ موجود ہے, جسے کہا جاتا ہے مغالطہ اشتراک لفظی. کہ لفظ تو ایک ہی ہوتا ہے لیکن اس کے معانی جگہ جگہ پر مختلف ہوتے ہیں. مثلا آپ چونکہ طلاب ہیں جانتے ہیں اس کو, ایک مثال جو ہے معروف ہے, آپ عربی زبان میں اگر دیکھیں تو لفظ عین جو ہے وہ چشمے کے لیے بھی بیان کیا جاتا ہے, आंख के लिए भी इस्तेमाल होता है, जासूस के लिए भी इस्तेमाल होता है, और उसके अलावा 72 मानी है कि जिसके अंदर लफ्ज़ ऐन इस्तेमाल होता है। अब अगर कोई कहता है कि मैंने ऐन को देखा है, तो अब मानी का पता ना हो तो कभी भी आप इस मतन का तर्जमा नहीं कर पाएंगे कि इससे क्या मुराद है। या मसलन शेर का लफ्ज आपने सुना है, शेर लिखने में वो क्या है, शेर बोलने में आता है, लिखने में शीन ये रा है। अगर आप सरायकी पट्टी के अंदर जाते हैं, वहां पर दूध को शीर कहते हैं और शेर को भी क्या है, शेर कहते हैं, फकत तलफ्फुज़ थोड़ा सा है। अगर ये चीज लिखी हुई हो, हाँ फारसी में तो तलफ्फुज़ ही एक है, शीर हैवान को भी शीर कहते हैं और दूध को भी शीर कहते हैं, और जिस से आप टूटी खोलते हैं उसको भी शीर कहते हैं, शीरे आब कहते हैं उसको, या जिससे पानी निकलता है उसको शीरे आब कहते हैं। तो अब एक लफ्ज है कि एक में हैवान दरिंदा मुराद है, एक में दूध मुराद है, एक में जो है वो टूटी का वो मुराद है। अब अगर आप शीर का लफ्ज इस्तेमाल कर देते हैं तनहा, तो कभी भी फैसला नहीं कर पाएंगे कि क्या मुराद है यहां पर। अगर आप फिक्री दुनिया के अंदर आ जाएं, तो बोलने वाला कुछ और मुराद ले रहा होगा और सुनने वाला कुछ और मुराद ले रहा होगा, अगर मुराद को वाज़े ना किया जाए, इस्तिदलाल गलत हो जाता है, नतीजा गलत हो जाता है, जिसके नतीजे में इंसान के इतकादात गलत हो जाते हैं, इंसान की जिंदगी पर असर पड़ता है। कि एक मिसाल जो आयतुल्लाह मिसबाह हफ़ज़हुल्लाह ने फरमाई है, बयान की है, उसको बयान करेंगे, पता चल जाएगा कि इस चैप्टर की कितनी ज़्यादा अहमियत है, कि इसको कल ही शुरू करते हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।